जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में आप लोग कपिलोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। मय अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। महात्मा कौन होते हैं? संत कौन है? साधु कौन है? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संत भगवान को प्रिय, साधु भगवान को अच्छे लगते हैं। अनेकों लक्षण कहने के बाद सबसे प्रियतम जो लक्षण कहा वो ये कहा कि मैं अनन्य भावेन, मुझे अनन्य भाव से भक्ति करता है, मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है। फिर कहा भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, दृढ़ भक्ति करता है। अनन्यता की एक बात याद आ गई है, वो सुना दूं फिर आगे बताता हूं। शायद सुना हो आपने, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। सुना है तो क्या है, दोबारा सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। गीता में वही अनन्या चिंतियंतो मां ये जना परिपासते, तो वो एक ब्राह्मण देवता थे और पारायण करते थे, प्रतिदिन रोज पढ़ते थे गीता को। बड़े बेचारे गरीब थे, कुछ था नहीं। अच्छा, भक्तों के जीवन में संकट बहुत होते हैं, ध्यान रखना। तो नहीं था कुछ, खाने को भी नहीं था, रोज भिक्षा लेकर के आए, अपना जैसे जीवन चलाए। तीन दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला, बड़े परेशान, साधना में ही रत रहे, ध्यान ही नहीं दिया। हुआ क्या कि बाहर जाए भी तो बारिश हो गई, तो कहीं निकल ही ना पाए, खाने का कुछ इंतजाम नहीं हुआ। और ये कहानी मैंने बहुत छोटे में सुनी थी अपने पिताजी से जी। तो वो पाठ कर रहे थे तो ये श्लोक आया, अनन्याश्चिन्त्यन्तो वां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का मैं वाहन करता हूं, ये जब उन्होंने पढ़ा तो कहा नहीं, शायद हमको लगता है कि छापने वाले की गलती हो गई है, वहां में हम नहीं होगा, करो में हम होगा। हाँ, कि तुम करो तो वो मदद करता है, ऐसा होगा कुछ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर यहां तीन दिन से बैठे कुछ नहीं मिला का मतलब क्या हुआ? या तो हमारी अनन्यता में कोई कमी, या फिर ये छापे खाने की कोई कमी है, तो मैं शुद्ध कर देता हूं। तो उन्होंने वो पेन लिया और उसको काट दिया, करोमियम ये ठीक नहीं। और रोज पाठ करते थे, पूरा पाठ, विश्वास अविश्वास नहीं हुआ भगवान के प्रति। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने गलत किया होगा या भगवान नहीं है। हा? मन में लगा कि शायद छापे खाने की गलती है, भगवान क्यों वहन करने के लिए आएंगे। वाहम्यम का मतलब हुआ, वाहम्यम का मतलब हुआ कि वो स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, वहन करते हैं खुद, किसी को भेजते नहीं कि चले जाओ। मैंने सुना है कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि मैंने सुना है कि अगर भक्त पुकारे तो भगवान खुद दौड़े दौड़े आते हैं, ये सच है? बीरबल ने कहा बिल्कुल सच है। तो कहा आजी पागल है तुम्हारा भगवान कि भक्त दौड़े और खुद पहुंच जाता है, उसके पास में लोगों की कमी? अरे हम जैसे राजा हैं और इतने सारे लोग हैं, प्रजा है, इतने सारे लोग हैं दुखी, हम तो सब जगह नहीं जा सकते, हम तो अपने लोगों को भेजेंगे, मंत्रियों को भेजेंगे, सेवकों को भेजेंगे, तो क्या भगवान के पास कोई सेवक नौकर नहीं है? तो बीरबल ने कहा नौकर तो हैं, लेकिन आप भी कहीं कहीं खुद ही जाओगे। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो उसका बेटे का पुतला बना करके और जब पानी में गिराया तो उसने ये नहीं कहा कि दौड़ो कूदो, खुद ही कूद पड़ा। तो बीरबल ने पूछा कि आपने नौकरों को याद क्यों नहीं किया, आपने सेवकों को याद क्यों नहीं किया? तो कहा जी पागल हो, अपने बेटे के लिए नौकरों को याद करूं? तो तो कहा कि जैसे ये तुम्हारा बेटा है ऐसे भक्त भगवान का बेटा है, वो भक्त के लिए स्वयं ही आते हैं, स्वयं वहन करते हैं। तो उनको लगा कि नहीं स्वयं वहन नहीं करते होंगे, मन में ऐसी बात आई। और जो भक्त होता है बड़ा सीधा साधा होता है, सरल होता है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। बुद्धि वाले लोग थोड़ा खटपट करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो वो ज्यादा उन्होंने सोचा भी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं होगा कुछ गड़बड़, तो उन्होंने काट दिया उसको और भिक्षा लेने के लिए चले गए कि शायद आज कहीं कुछ मिल जाए। और बचपन से ये छाप मेरे मन पे पड़ी कि जब हमारे पिताजी ने कहा कि वो उधर गए और आधा घंटे के बाद एक छोटा सा सुंदर सा बालक और सिर पर टोकरी रख करके और अंदर में आया और उसने कहा कि पंडित जी ने ये भेजा है आपको सामग्री। तो वो तो देखती रही, एक तो वो सुंदर बालक उसका सौंदर्य ही मोहित कर ले गया और दूसरी बात वो सामग्री देखी तो उनके मन में थोड़ी उलझन हुई कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को भेजा हो, इतना मिलता ही नहीं है कि दूसरे के हाथ से भेजे, थोड़ा ही मिलता है जिससे जीवन यापन हो, जीवन चल जाए, इतना ही उनको प्राप्त होता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और फिर इतनी सारी सामग्री, तो कहा आपको भेजा, इतने सुंदर बालक को कष्ट दिया। तो कहा नहीं वो वृद्ध हैं, इतना नहीं उठा सकते थे, इसलिए हम लेकर के आ गए, हमको कह दिया वो अभी अभी आ रहे। ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने भेजा है तो आप रख दीजिए। लेकिन जब रखने लगा तो देखा कि यहाँ उसके मुंह से खून बह रहा है क्योंकि भगवान की वाणी को काटा है। तो पूछा कि ये तुम्हारे खून छोट कैसी, बोले पंडित जी ने थोड़ा थप्पड़ मार दिया उसी से ये चोट आई। ये कथाएं भी बड़ी प्रेरक होती हैं, ये कथाएं भी तुम्हारे हृदय में जगह बना लें अगर तो परमात्मा की सीधी कृपा उतर जाए महाराज। तो उन्होंने मारा है हमको, तो कहा तुमको मारा है, वो तो बड़े दयालु किस्म के आदमी ऐसा तो नहीं करते, और तुम्हारे जैसे निरपराध इतने सुंदर बालक को मारा, बात क्या है। बोले नहीं उन्हीं से पूछना वही बताएंगे हम क्या कहें। और वो इतना कह के चला गया। पंडित जी निराश और हताश बेचारे वापस आए, कुछ मिला ही नहीं था। और श्रीमती जी तो रास्ता ही देख रही थी कि आए तो झगड़ा शुरू करें कि इतनी सुंदर बालक को आपने क्यों मारा, क्यों पीटा। जैसे ही आए तो निराश हताश देखे, बोले आप परेशान क्यों लग रहे हैं। बोले आज फिर कुछ नहीं मिला। तो क्या गजब करते हो, अभी तो अभी भेजा आपने कितनी सारी सामग्री, और सामग्री बाद में, पहले ये बताओ उतने सुंदर लड़के को आपने मारा क्यों। पूरी कहानी जब मालूम पड़ी तब उनको लगा कि हाँ बिल्कुल हमने मारा है, गलती किया है। और उठाया गीता को और सही किया कि नहीं वही सही है। अनन्याश्यंतियन, तुम्हारी भावना की परीक्षाएं भले ही हो, और वो भी परीक्षाएं तुम्हें दुनिया वालों को देनी पड़ती हैं, परमात्मा कोई परीक्षा नहीं मांगता, इतना भी निवेदन करूं मैं आपको। आप ऐसा मत समझना कि भगवान को पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो सारी दुनिया के विषय में जानता है, दुनिया की हकीकत जानता है, वो जिसे आप अंतर्यामी कहते हो, वो संसार में जिससे कोई भी चीज छुपी नहीं है, और उस परमात्मा को तुम कहते हो कि तुम्हारी साधना के विषय में उसे पता नहीं होता है इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेगा। भगवान परीक्षा दीक्षा नहीं लेते हैं, दुनिया के दिखाने के लिए कि देखो कितना संघर्ष किया इसने फिर भी इसने अपना विश्वास नहीं खोया, ऐसा अगर तुम बनो तो हमारे तुम भक्त बन सकते हो। हम लोगों को सिखाने के लिए वो ऐसा नाटक करते हैं, ये विश्वास रखना। तो अनन्य भाव अगर तुम्हारे हमारे अंदर में आए, और कैसे अनन्य भाव, भक्तिपूर्वक, प्रेम भी हो, रस भी हो, अनुराग भी हो। हमारे महात्मा एक वो कहते हैं कि जैसे रुपए गिनने में तुम्हें अनुराग मिलता है, रस मिलता है। भजन, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में भजन शब्द का बड़ा बढ़िया अर्थ किया है, भजनम रसनम, रस लेने का नाम भजन है। खाली माला घुमाने का नाम भजन नहीं है, खाली पन्ने पलटने का नाम भजन नहीं है कि आपने भजन गा दिया और भजन हो गया, रस लेने का। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे जानवर घास खा लेता है, चारा खा लेता है, तब उसको उतना मजा नहीं आता, जब वो खाने के बाद बैठता है और पगुराना बोलते हैं हमारे यहाँ, आपका पता नहीं क्या बोलते हो, मुंह चलाता है ना बाद में बैठ कर, जुगाली जुगाली, तो वो जुगाली जो करता है बाद में बैठ के, उसमें उसको रस मिलता है, उसमें उसको आनंद मिलता है। ऐसे ही भजन करने में अगर आपको आनंद मिल रहा है तो समझो भजन हो रहा है, तब आप कह सकते हो कि हमने भजन किया, और आप अपने मन में ये विश्वास कर सकते हो कि आपका भजन हुआ। लेकिन अगर रस नहीं मिला तो भगवान के सामने फिर बैठ के रो कि महाराज आज हमसे भजन नहीं हुआ, माला तो जप किया, सब कुछ किया, आपके सामने बैठे भी, लेकिन भजन नहीं हुआ क्योंकि आज रस नहीं आया, हमारे ही कोई पाप प्रबल हो गए, हमारे ही पाप आड़े आ गए। आपके भजन में, आपके नाम में तो रस है, आपके नाम में तो आनंद है, लेकिन पाप बीच में आ गए, इसलिए उस रस का अनुभव हमको हो नहीं सका। तो भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, अनुराग पूर्वक अनन्य भाव रखते हुए भक्ति करे, कैसे? दृढ़ता पूर्वक। अब एक बात और समझना, यहां भगवान कपिल कहते हैं कि दृढ़ भक्ति करे, ये मेरी समझ में बात आई नहीं। अगर सीधे सीधे आप देखो, जिससे आप प्रेम करते हो, प्रेम अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये दृढ़ शब्द लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रेम अपने आप में दृढ़ ही होता है। जो अदृढ़ हो वो प्रेम ही ना कहा जाए। आपका बहुत पेट भर गया, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप कह दो पेट भर तृप्त हो गए हम, काफी है। ठीक इसी प्रकार से अगर कह दिया कि भक्ति करो, तो भक्ति शब्द अपने आप में पूर्ण है। कि दृढ़ भक्ति करो, कि अमुक भक्ति करो, कि अमुक भक्ति करो, ये कहने की जरूरत कहां पड़ी? और यहां दृढ़ शब्द अगर कहा तो उसका कुछ अलग मतलब निकलना चाहिए। भक्ति दृढ़ नहीं होती है, भक्ति तो अपने आप में पूर्ण है। तो बोले दृढ़ता तुम्हारे मन की है, तुम्हारे मन का कोई भरोसा नहीं कि किधर डिग जाए। और दूसरी बात, ये दृढ़ता कुछ और संकेत करती है, ये दृढ़ता कुछ और कहती है, और वो सावधान करती है इस पथ पर चलने वाले सभी लोगों को। ये दृढ़ शब्द उन लोगों के लिए सावधान करने के लिए है जो हड़बड़ी में कदम उठाते हैं। ये दृढ़ शब्द उन लोगों के लिए है कि आप ऐसा मत सोचना कि बस चल पड़े और हम पहुंच जाएंगे, कि भगवान आ जाएंगे, कि प्रकट हो जाएंगे। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि गए और कथा सुनी, और कथा सुनने के 3 दिन बाद और कुछ पता नहीं चला, महाराज सुना तो लेकिन मजा नहीं आया, ऐसे ही बोलते हैं लोग। आप अचकित रहेंगे, कथा सुनने के बाद बोले मजा नहीं आया। उनको लगता है कि 3 दिन के बाद ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, भगवान उतर जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि हाथ का खेल है, चुटकी बजाई और परमात्मा हाजिर, कि हाँ बोलो आज्ञा करो, कि कहाँ आए, क्या करें तुम्हारे लिए। तो उन लोगों को सावधान करने के लिए, और सरल जो हृदय के भावपूर्ण जिनके हृदय हैं, उन लोगों को बताने के लिए कि एक बात ध्यान रखना, इस भक्ति के पथ पर, इस प्रेम के पथ पर जो जिसने भी कदम बढ़ाया है, मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ा है। ये दृढ़ता शब्द उन्हीं मुश्किलों को इंगित करता है कि अगर आप संसार की चकाचौंध को देख करके और संसार की चमक दमक को देख करके और ये सोचो कि भगवान के हम भक्त हो जाएंगे तो हमें दुनिया के सुख मिलेंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे तो हम जो कहेंगे वो सब हमको मिलता चला जाएगा, सारी परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी, अगर ऐसा सोच करके आए हो तो थोड़ा रुको, थोड़ा विचार करो, बैठो। ये दृढ़ शब्द उसको इंगित करता है, सावधान करता है। क्या करता है सावधान? बोले सावधान ये करता है कि तुम्हें मालूम है कि भक्त कौन है, तुम्हें मालूम है कि परमात्मा की भक्ति किसे कहते हैं? तो कहा नहीं। बोले पहले इतिहास उठा करके देख लो, पहले जितने भक्त हुए हैं उनको देख लो, चाहे मीरा हो, चाहे नरसी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे जितने भी लोग तुम्हें जितने भी याद आते हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, सबको याद कर लो, और उनके जीवन की आने वाली कठिनाइयों को याद कर लो, उनके जीवन में आई हुई समस्याओं को याद कर लो, उनके जीवन में आए हुए तानों को याद कर लो, परेशानियों को याद कर लो, और उसके बाद में कदम उठाना। आप उन सारी समस्याओं को, उन परेशानियों को झेलने की ताकत रखते हो, इतना ध्यान रखना। तुम्हें करना कुछ नहीं है। सही बात यह है कि अगर आप प्रेम करते चले जाओ तो आपको परेशानियां कठिनाइयां मालूम पड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं तितिक्षवा साधवा, कि साधु कैसे होते हैं? तितिक्षु होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम, तो वो तितिक्षु का मतलब है कि अगर आपने परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखा तो किसी भी स्थिति में कोई भी दुख आएंगे जरूर, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएंगे, परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन पता ही नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। कैसे मालूम नहीं पड़ेगा? यही कुरला की एक घटना है। एक माता जी हमको सुना रही थी कि स्वामी जी हम रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, रिक्शा पलट गया। तो फिर क्या हुआ? बोले रिक्शा पलटा तो जहां गिरा वहां कीचड़ जैसा था, गंदगी थी, मैं गिर गई, सारे कपड़े खराब हो गए, सब लोग तमाशा इकट्ठा हो गया, सब देखने लगे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सब मुझे देख रहे थे, तो मैं उठ के भागी वहां से, कपड़े पड़े गंदे हो गए थे, दूसरा रिक्शा किया, चल दिया। अब रिक्शा दूसरा करने के बाद में देखने लगी कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, कपड़े ज्यादा खराब हो, तो देखा कहीं खून लगा हुआ, अभी तक उनको पता नहीं था, बड़ी मस्त थी हा? लेकिन जब देखा तो पैर का जो पिछला भाग है, एड़ी बोलते, वो पूरा कट गया था, निकल गया था पूरा, और जब इन्होंने देखा तो बेहोश हो गई। जब तक पता नहीं था तब तक मस्त थी, तब तक क्योंकि नजर दूसरों की तरफ थी कि सब मुझे देख रहे हैं, तो वहां संकोच भाव था, शर्म का भाव था कि जल्दी भागो, कैसी गंदी हालत में यहां खड़ी हो। तो मन शरीर से अलग था, इसलिए उस कष्ट का उसको बोध ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। कितनी विचित्र बात है कि संसार में अगर तुम अपने मन को दूसरी जगह ले जाते हो तो शरीर के कष्ट का अनुभव नहीं होता, और यहाँ परमात्मा चिंतन में लगा रहे हो अपने मन को, हम अपने मन को लगाएं और थोड़ी थोड़ी मुश्किलों का आभास होने लगता है। एक सज्जन आए हमसे कहने लगे, बुरा मत मानना, हमसे कहने लगे कि स्वामी जी हम ध्यान करते हैं लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। हमने कहा क्या, तो कहा कि वो कमर दर्द करने लगती है। हमने कहा फिर आप ध्यान नहीं करते हो क्योंकि ध्यान में अगर कमर याद रही तो फिर ध्यान हुआ कहाँ। अच्छा ये तो पक्का है कि जिस समय आप बैठे ध्यान में उसमें तो दर्द तुरंत तो शुरू नहीं हो जाएगा कि जैसे ही बैठे वैसे ही दर्द शुरू हो गया, ऐसा तो होता नहीं। अगर ऐसा होता तो आप बैठते ही नहीं, ये भी तो बात है। बाद में दर्द होना शुरू हुआ, और जब बाद में दर्द होना शुरू हुआ तब तो आपका ध्यान लग जाना चाहिए था, तो फिर आपको पता कैसे चला कि कमर दर्द हो रहा है। और कमर दर्द का अगर एहसास है तो फिर इसका मतलब है कि ध्यान हमारा कहाँ हुआ। और मैं तो लोगों को कहता हूँ कि ध्यान लगाना है आपको, तो कहने लगे हाँ तो लेकिन कमर दर्द करती है। हमने कहा जहाँ दर्द होता है वहीं ध्यान लगाना शुरू करो आपको शायद मालूम हो, आपको शायद पता हो कि रामकृष्ण का ध्यान नहीं लग रहा था, रामकृष्ण परमहंस का, तो उनके जो गुरु थे तोतापुर उन्होंने लेकर के क्या किया, कांच का टुकड़ा उठाया और यहाँ चीर दिया यहाँ सामने, बोले अब ध्यान करो यहाँ देखो। और कुछ उनका अभिप्राय दूसरा था, मेरा मतलब यही है। तो हमने कहा जहाँ तुम्हारा दर्द होता है वहीं अपने मन को टिकाओ, बस उसी को देखो और किसी को मत देखो, साक्षी भाव से अलग होकर के देखो, आपको पता चलेगा। तो जहाँ अब अपने बचपन की एक और बात बता दूं, कुछ छोटा ही था जब आश्रम में था तो वहां सिखाया जाता कि तुम मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर को जानने वाला जो साक्षी चेतन आत्मा है वो मेरा स्वरूप है। अब इन बातों का मतलब मैंने कुछ नहीं समझा जब आश्रम में था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि आत्मा क्या है कि शरीर क्या है, लेकिन जो सुनता था वो बड़ा सुंदर भी लगता था। और मैंने आपको पहले भी कहा कि स्वामी जी महाराज प्रयोग के अभिप्राय में हमेशा रहे कि जो कुछ भी आप सुनते हो उसका प्रयोग करो, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, शरीर को देखने वाला हूं, शरीर को जानने वाला हूं। तो एक काम से मुझे भेजा खेत में, क्योंकि हमने आश्रम में सब कुछ किया, तो वहां कुछ खराब हो गया था ट्रैक्टर वगैरह, स्वामी ने कहा कि तुम चले जाओ, तो स्लीपर पहने हुए थे साधारण, और मैं दौड़ के जा रहा था तो वहां खेत में डंठल होते हैं उसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया, चप्पल निकल गई, दौड़ के जा रहा था पैर पड़ गया, तो खचाक से पूरा खून खून हो गया एकदम, जब खींचा तो खून की धार बहने लगी। मुझे भी भरोसा नहीं होता, आपको कहां से होगा कि अजीब हालत हुई कि खून बह रहा है और मैं वहीं बैठ गया और रट रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को देखने वाला हूं मैं शरीर को जानने वाला हूं, मैंने शरीर को देखा, मैं शरीर से बिल्कुल देखो ये खून बह रहा है, मैं देख रहा हूं, इसको जान रहा हूं, ये मेरा मैं नहीं हूं, ये पैर है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे बिल्कुल भी बोध नहीं हुआ कि दर्द भी हो रहा है, मैं मस्त हूँ, दूसरे लोग परेशान कि कितना खून निकल रहा है तुमको परेशानी नहीं, तो मैं उनको देखूं फिर पैर को देखूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ रट रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को देखने वाला हूं। आप अपने मन को अगर शरीर से हटा लो तो कहीं दर्द का एहसास हो ही नहीं सकता। हाँ प्रयोग करके देखो, ये मेरी बात नहीं है, ये तुम्हारे यहां भी हो सकता है, और इसके लिए वेदांत की भी जरूरत नहीं कि वो तुमको पूरा बोध हो तभी इसका अनुभव हो सकता है, मेरा विश्वास है और प्रयोग किया हुआ कि आप रट के देखो, रटना शुरू कर दो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को मैं जानने वाला हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आप देखोगे कि दर्द तो हो रहा है लेकिन किसी और को हो रहा है, आप उससे तुरंत अलग हट जाओगे। तो जिसमें आप परमात्मा का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, वहां पर समस्याएं रही कहां, उन समस्याओं को देखने वाला रहा कहां। आप पहले समस्याओं को देखने वाले को तो ढूंढो कि कहां है, वो तो चला गया, वो तो गायब हो गया, वो तो परमात्मा के प्रेम में डूब गया। तो भक्ति दृढ़ाम कहने का अर्थ मात्र इतना है कि ध्यान रखना कि जब आप इस पथ पर कदम रखोगे, जब इस रास्ते पर चलोगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी। हमारे यहां महात्मा लोगों ने कहा है कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम करोगे तो विघ्न आएंगे, अच्छे काम, और ये तो सबसे अच्छा काम है। उपनिषद आप सुनते हैं वहां तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि देवता भी विघ्न डालते हैं अगर आप वेदांत का अध्ययन करने लो। हाँ परमात्मा के पथ पर चलो, कहीं भक्त न बन जाए, कहीं ज्ञानी न बन जाए, तो देवता भी आकर के ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं। वजह इतनी कि अगर ये भक्त बन गए, अगर ये ज्ञानी बन गए, तो फिर हवन कौन करेगा, कि यज्ञ कौन करेगा, हमको कौन पूछेगा, हमारी आहुतियां कौन देगा। तो चारों तरफ से आपके सामने संकट खड़े होने वाले हैं, चारों तरफ से समस्याएं आने वाली हैं, परेशान होने वाले हो, तो उन परेशानियों की वजह से कहीं आप इस पथ से च्युत न हो जाए, गिर न जाए, इसलिए यहाँ दृढ़ शब्द है। भक्ति के लिए दृढ़ नहीं है, ध्यान रखना। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। भक्ति जिसके हृदय में आई वो पूरी होकर के आएगी। भक्ति आधी अधूरी होकर के कहीं नहीं आती है, वो पूर्ण होकर के ही आती है। लेकिन हमारे मन में वो स्थैर्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, हमारे मन में वो दृढ़ता नहीं है। और इस अवस्था में जब कहीं संकट आते हैं, जब कहीं दुख आते हैं, तो उन दुखों के आवेग में हम कहीं बह न जाएं। इसलिए कपिल कहते हैं कि जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं, मैय अनन्यन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। संसार के लोग जब भक्ति करते हैं तो दुखों के आने पर वो छोड़ देते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वो भगवान को बहुत मानते थे। वही कहते थे कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, बड़ी पूजा करता हूँ। हमने कहा बहुत मानते हो, कह रहे हो तो कहीं खतरे की बू आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं मान रहे? हाँ, बोले नहीं नहीं, सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, बड़ी निष्ठा है मेरी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके पुत्र का निधन हो गया, उनका बेटा मर गया, तो उन्होंने भगवान को उठा के फेंक दिया। एक और घटना अभी ताजी ही घटना है, 2 साल पहले की, वो भी भगवान को बहुत मानते थे। हाँ? और जब उनका लड़का मर गया तो उन्होंने हमको फिर SMS किया कि हमने उठा करके भगवानों को फेंक दिया नदी में, बहा दिया। मैंने फिर लिखा उनको, समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ में आई बात। तो ये अब आप कहो कि वो भक्ति कर रहे थे, अब ये कहें कि भक्ति दृढ़ नहीं थी उनकी। नहीं नहीं, भक्ति तो पूरी होती है जहां होती है। तुमने भक्ति को आने का अवसर दिया ही नहीं, अपने मन में दृढ़ता तुमने पैदा की ही नहीं, इसलिए दुख जहां देखे और वहीं पर आप परेशान होने लगे। तो यहां जो भक्त हैं वे दुखी होने के बाद में भी परमात्मा को दोष नहीं देते, भगवान को दोष नहीं देते। भक्तों की तो सोच ही अलग है। भक्त क्या कहते हैं, भक्त जब दुख आते हैं भक्ति के ऊपर, ये भी हमने बचपन में ही सुना था, हमारे महाराज कहते थे कि जब दुख आए तुम्हारे ऊपर तो सोचना परमात्मा की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, बड़ी अनुकंपा है, भगवान तुमको देख रहा। भागवत में आया है, भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कहा है, परीक्षित ने पूछा कि महाराज भगवान विष्णु का स्वभाव कैसा है, तो भगवान सुखदेव ने कहा उनका स्वभाव ऐसा है, उनकी कृपा करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो जिसके ऊपर कृपा करते हैं सबसे पहला काम करते हैं कि उसके जीवन से धन को खींच लेते हैं, तो रुपया पैसा मोह माया ये सब जो भी दुनियादारी माया इकट्ठी की हुई है उनको हरण करना शुरू कर देते हैं, दुखों को लाना शुरू कर देते हैं। तो कहा क्यों, बोले जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो मित्र दूर हो जाएंगे, परिवार दूर हो जाएगा, बेटे भी नहीं मानेंगे, सब लोग छोड़ देंगे तुमको, अकेले रह जाओगे बस। जब अकेले रह जाओगे तब तुम भगवान को बढ़िया तरीके से याद करोगे। ये परमात्मा की, भगवान विष्णु की कृपा करने की शैली है। तो हमारे महाराज कहते थे कि जब महात्मा के जीवन में, साधु के जीवन में दुख आए, परेशानी आए साधक के जीवन में, तो समझना परमात्मा की बड़ी कृपा है। क्यों, बोले भक्त एक बात समझता है, जानता है कि जब दुख आते हैं तो फिर दुख किसका परिणाम है मालूम है आपको, दुख पाप का। दुख किसका परिणाम है, पाप का। और जब दुख आया तो फिर क्या होगा, पाप खत्म होंगे अपने आप। तो जो बड़ी बड़ी तपस्या करके, बड़ी बड़ी साधना करके पापों को खत्म करने के लिए करते हैं, लोग साधना करते हैं, तप करते हैं कि ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और वो अंतःकरण अपने आप ही शुद्ध हो रहा है, वो पाप अपने आप ही क्षरण हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये भक्त की सोच है। तो भक्त दुखों को देख करके परेशान नहीं होता, उल्टा खुश होता है कि बड़ी कृपा किया, बड़ा आनंद आया, ठीक है जीवन है, प्रारब्ध है। अच्छा, तुम चाहे रो चाहे गाओ, दुख तो आएंगे ही। ऐसा मत सोचना कि भक्त के जीवन में ही कष्ट आते हैं, परेशान तो सभी, लेकिन भक्तों को वो महसूस ज्यादा होने लगता है। अंतर सिर्फ इतना है, भक्तों को महसूस इसलिए ज्यादा होने लगता है कि वो भगवान की तरफ चित्त लगाते हैं, संसार को उतना देखते ही नहीं है, इसलिए हर समस्या उनको बड़ी दिखाई देने लगती है। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आने लगती हैं, बड़े बड़ी तकलीफें उनको होने लगती हैं। लेकिन अगर इन परेशानियों से आप डर गए तो कहा कि तो फिर थोड़ी सी कमी है कहीं, थोड़ी सी कहीं आप में कमी है, उसका थोड़ा सा सुधार करो। उसको सुधारने के लिए, पहले से ही सावधान करने के लिए यहाँ का भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। वो महात्मा जो होते हैं, सामान्य पुरुषों की हम बात नहीं कर रहे, जो भक्त होते हैं, भगवान के संत होते हैं, वे ऐसे होते हैं कि कितने भी संकट आए और वह दृढ़ता पूर्वक परमात्मा की भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति कभी डिगती नहीं, डावाडोल नहीं होती, उनके मन में भी कभी ख्याल नहीं आता। तो कहा वो आपके आदर्श होने चाहिए, वो हमारे आदर्श होना चाहिए। प्रहलाद, कई लोगों को हमने देखा है कि पूजा करते हैं, बड़े सच्चे हृदय के होते हैं लोग, और पूजा करने के बाद अब थोड़े से परेशानियां आई तो भगवान के सामने पहुंच जाते कि तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं इतनी पूजा किया उसका फल ये दिया। हाँ? तुम्हारी सामने तुम्हारे ऊपर इतना जल चढ़ाया लोटे का, लोटा लेकर के शिव जी को बोलते हैं, इतनी परिक्रमा लगाई, उसका परिणाम ये। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने उन सज्जन से कहा कि एक बात बताओ आप कि प्रहलाद चरित्र सुना है आप? तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, छोटे ही थे? बोले बिल्कुल थे। हमने कहा कि उनके जीवन में जो परेशानियां आई उनसे आप परिचित हो? तो कहने लगे हाँ परिचित है। कितनी परेशानियां आई आप सोच नहीं सकते, उनका बाप ही उनके खिलाफ हो गया। इतना खिलाफ हो गया कि बाप ने ही आज्ञा दे दी कि मार डालो इसको, खत्म कर दो। कम से कम हमारे जीवन में ऐसी घटना तो नहीं घटी कि हम भगवान की पूजा करते हैं और कोई कह दे कि हमारे परिवार के किसी ने ही कह दिया हो कि खत्म कर दो इनको, समाप्त कर दो। इतना तो नहीं, ना हम उतने बड़े भगत हुए और ना ही इतनी बड़ी समस्या आई। और उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी परेशानियां आई, जितनी आप नरक की यातनाओं को सुनते हो, यम यातना, वो सारी यातनाएं उन्होंने वहां भोग ली थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय में, थोड़े ही काल में। लेकिन आप भागवत पढ़ लेना, दूसरा पुराण पढ़ लेना, जहां भगवान प्रहलाद जी का चरित्र है, जहां जहां हो कहीं भी पढ़ लेना, आप प्रहलाद के मुंह से एक बार भी ये नहीं सुनोगे कि उन्होंने भगवान से कहा हो कि महाराज तुम्हारी साधना करने का ये फल है, तुम्हारे जप, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना का ये फल है कि हमको इतने संकट झेलने पड़े, इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कभी नहीं। अच्छा भगवान जब आए तब भी नहीं कहा? भगवान जब आए तब तो कहते कि वाह महाराज इतना समय लगा दिया आने में, और हम यहां मर रहे थे और तुम कहां गायब थे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं था? कुछ नहीं, प्रसन्न है प्रहलाद, आनंदित है। कि और भक्त कभी यह भी आग्रह नहीं करता कि तुम आ जाओ, नहीं चाहता। स्वामी राम के विषय में मैंने सुना है कि वो नदी के किनारे खड़े होकर के चिल्लाते थे कि कृष्ण कहां हो, भगवान कृष्ण के बड़े उपासक थे, और शायद आपको पता हो इतने बड़े उपासक थे कृष्ण के कि हर काली चीज से उन्हें प्यार हो गया, हर काली चीज, काला नाग उनके यहां आ गया तो उसको भी हाथ में लेकर के और ऐसे ऐसे करने लगे कि कृष्ण के रंग का है, इतना अद्भुत प्रीति, इतना अद्भुत प्रेम। और पक्के वेदांती भी थे, ये भी आपको मालूम हो। तो नदी के किनारे खड़े होकर के, रावी नदी के किनारे खड़े होकर के चिल्लाते थे कि कृष्ण कहाँ है, और मैंने सुना है कि भगवान आते थे और आए और प्रकट हुए, कहने लगे बताओ क्या करूं, आ गया? तो कहा अच्छा आ गए, बोले एक ही काम करो चले जाओ, आने की जरूरत नहीं, आप चले जाइए। तो भगवान ने कहा फिर बुलाया क्यों? बोले बस बुलाने में आनंद आता है, पुकारने में आनंद आता है, और तुम नहीं होते, तुम्हारे देखने में थोड़ा वो आनंद में खलल पड़ता है, तुम नहीं होते हो तो उसमें ज्यादा आनंद आता है। तुम्हारे नहीं होने में, तुम्हारे जो स्मरण करते हैं हम, स्मृतियां, तुम्हारी लीलाओं का जो चिंतन करते हैं, तुम्हारी जो कथा प्रवचन सुनते हैं, उनमें बड़ा, तुम्हारे वियोग में बड़ा आनंद है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो चैतन्य ने कहा कि हमको संयोग और वियोग दोनों चाहिए। तो कहा संयोग और वियोग तो संभव नहीं, कि जहां अंधेरा भी हो प्रकाश भी हो, ये कैसे हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो? तो कहा नहीं नहीं, हमको दोनों चीजें अलग अलग जगह के चाहिए। क्या? बोले वियोग चाहिए परमात्मा का, भगवान कभी ना आए सामने। वो जब दूर रहते हैं तभी उनका स्मरण करने में, लीला सुनने में आनंद आता है। और संयोग किसका चाहिए? तो कहा संयोग चाहिए महात्माओं का। बोले महात्माओं का संयोग क्यों? इसलिए कि उसको याद करने में अगर कहीं संसार को देख करके थोड़ी सी भूल हो जाए, थोड़ा विस्मृत हो जाए, चित्त कहीं भटकने की गुंजाइश हो, तो ये याद दिला दें कि नहीं नहीं तुम्हें उसको याद करना है। और महात्मा होंगे तो याद उसी की दिलाएंगे। यहाँ पर भी कहा है सताम प्रसंगा ममवीरे संवेदो, भगवान के साथ जब रहोगे आप, महात्माओं के साथ जब रहोगे, संतों का साथ करोगे, तो वही तो याद करवाएंगे कि परमात्मा का चिंतन करो, भगवान की लीलाएं सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, जहां कथा सुनाएं और उनका चिंतन आनंदित करने वाला है। तो कहा परमात्मा जितना दूर रहे उतना ही बढ़िया। भक्त ये भी नहीं कहते कि आप आ जाओ, उनकी लीला सुनकर के ही आनंदित होते हैं। और भक्तों की तो बड़ी विलक्षण लीला है। भक्त तो ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जहां परमात्मा नहीं है। और आप चकित होंगे, ब्रज के भक्त में मैंने एक कथा पढ़ी कि वृंदावन में एक भक्त भगवान के विग्रह के सामने, देखिए विचित्र बात है, और हम लोगों को भी अजीब लगी कि भगवान के मंदिर में खड़े होकर के चिल्ला रहा था, हे भगवान, रो रहा था कि भगवान दर्शन कब दोगे, दर्शन कब दोगे, आपके दर्शन के बिना तो ये जीवन बाहर हो गया है, आ जाइए प्रकट हो जाइए। तो एक संत पहले तो चुपचाप बैठे रहे, जब बहुत ही चिल्लाया तो उठ करके गए और खींच के थप्पड़ मारा उसको। तो वो भी चकित रह गया कि मैंने कौन सा अपराध किया, मैं तो अच्छी ही बात कह रहा था, मैं तो भगवान को ही बुला रहा था। उसने कहा भी कि आपने मारा क्यों, मैं तो भगवान को ही बुला रहा हूँ, कोई पाप थोड़ी कर रहा हूँ। बोले पागल कहेंगे, भगवान को बुला रही हूँ, सामने कौन खड़ा है? जो सामने जो तुमको नजर आ रहा है, जो तुमको सामने दिख रहा है, क्या इनको तुम भगवान नहीं मान रहे हो? बात आई समझ में? आप मानते हो, पूजा करते हो भगवान मान करके, आप कहते हो कि ये प्रभु है हमारे, परमात्मा है, और फिर उन्हीं से कहते हो कि दर्शन दो। अरे दर्शन तो कर रहे हो, अब क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? इसका मतलब है कि मन में कहीं ये बात बैठी है कि ये मूर्ति है, ये पत्थर है, ये भगवान नहीं है। और ये बात बड़ी विचित्र है कि कबीर ने लिखा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर के पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ों की पूजा करूं। तो लोग कहे कि वो साकार को नहीं मानते थे, वो निराकार को मानते थे, इसलिए ऐसी बात कही। हमने कहा नहीं नहीं, वो साकार को और निराकार की बात नहीं है, ये तो लोगों ने बाद में बेड़ा दी बात। तो बात क्या थी? बोले बात ये थी कि उन्होंने सही कहा, शब्दों पर गौर कीजिएगा, कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूजू पत्थर के पूजने से। अगर आप पत्थर की पूजा कर रहे हो तो भगवान नहीं मिलेंगे, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो। बात भावना की है, बात वहां पत्थर की नहीं है। जो सारे दुनिया को, सारे संसार को, अच्छा एक बात बताओ, वेदांत में इसको क्या कहते हैं? ये ब्रह्म है कि नहीं है? बोलो, सर्वं खल्विदं ब्रह्म पढ़ा है आपने, तो वेदांत की दृष्टि में संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ है जो ब्रह्म न हो? ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तो फिर मूर्ति ब्रह्म नहीं हो सकती। उसमें से तुम्हारे मन को हटा करके कैसे कहेंगे कि इसको छोड़ दो उसको? अच्छा इसको हम ब्रह्म माने और भगवान का जो विग्रह है उसको हम पत्थर माने, इससे बड़ी बेकार बुद्धि और कहां होगी? जरा बताओ हमको। जहां हम छोटी सी छोटी बेकार सी बेकार सब चीजों को, सब पदार्थों को हम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं, ब्रह्म का रूप बताते हैं, और वहीं हम भगवान के विग्रह को कहो कि ये पत्थर है, तो वहां तुमको पत्थर कहां नजर आए? इससे तो अच्छा है कि तुम यही कहो कि ये भगवान की पूजा करते क्यों हो, ये तो ब्रह्म है, ऐसा बोलो तो भी समझ में आए, तो भी अच्छा लगे मन को। ये तो भाएगा कि कम से कम तुम देखने वाले ने उसमें भगवान नहीं ब्रह्म को देखा, देखने वाले ने राम नहीं देखे, देखने वाले ने कृष्ण नहीं देखा, देखने वाले ने शिव नहीं देखा, उसने ब्रह्म देखा, तो भी बात अच्छी लगी। बात समझ में आ रही ना? तो भी अच्छा लगे। अगर कोई कहे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे पूछो क्यों, तो कहे बोले वो तो पत्थर है, पत्थर से पूजने से क्या हुआ? बोले भगवान सब जगह है कि नहीं? तो कहने लगे हाँ है। तो तुम यही कम समझो कि जो सब जगह भगवान है उसी की पूजा कर रहे हैं, रूप और आकार कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पाहन पूजे हरि मिले, अगर पत्थर को पूजने से परमात्मा मिलता हो तो मैं पहाड़ों की पूजा करूं। और मैंने एक कहानी याद आई मुझे कि पढ़ा था मैंने कहीं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, चाइना की घटना है, चीन की घटना है, एक सूफी फकीर कोई पहुंच गए वहां, ठंड बहुत थी, तो पहाड़ी सो रहे थे पेड़ के नीचे, वो जो मठ बना था बौद्धों का, और वहां लकड़ी की मूर्ति भगवान बुद्ध की, अजीब लगेगी घटना। अच्छा महापुरुष भी उपदेश देने के तरीके अलग अलग ढूंढते हैं, कई बार लगता विपरीत लेकिन होते सत्य। तो वहां पर भी कुछ महात्मा थे जो पूजा करते थे भगवान बुद्ध की मूर्ति की, भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन संत को अंदर नहीं ठहराया, बाहर ही कहा, बोले तुम बाहर ही रहो। संत ने कहा ठीक है, रात में बाहर रहा, ठंडी बहुत लगी, तो अजीब ही संत गए और वो जो मूर्ति रखी थी उठा के ले आए, उसमें आग लगा दी और तापने लगे, रात भर बढ़िया गर्म हो गया शरीर और सो गए। सुबह हो गई, ये मंदिर के लोग उठे लेकिन ये तो सो रहे थे, रात भर जागे थे, परेशान हुए थे, तो ताप करके गर्मी मिली थी उसी आग के पास में आराम से सहन कर रहे थे। अब मठ के लोग उठे और मंदिर में गए तो वहां मूर्ति नहीं, बड़े परेशान कि मूर्ति कहां गई, ढूंढने लगे, तो फकीर को देखा और वहां आग का ढेर देखा, समझने में देर नहीं लगी, तो डंडा लेके आए, मारा उसको, जगाया, बोले तुम सो रहे हो, सूर्य चढ़ाया, तुमको शर्म नहीं आती और तुमने ये क्या किया? और बहुत कुछ बोला, हमारे भगवान को मार डाला, समाप्त कर दिया, जिनकी हम पूजा करते थे, तुम कैसे महात्मा हो? आज याद बहुत तरह की बातें की, ये चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे, और जब बोलते बोलते बहुत हो गया तो इन्होंने क्या किया, लकड़ी उठाई और वो जो आग का ढेर था उसको ऐसे ऐसे ढूंढने लगे कुछ। तो गुस्से में तो वो लोग पहले ही थे, जब ये अजीब हरकत देखी तो उन्होंने पूछा क्या करते हो? तो कहा कि तुम्हारे भगवान को मैंने जलाया तो हड्डियां ढूंढ रहा हूं, समझ में आया, हड्डियां ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेवकूफो, बेवकूफ, इसमें हड्डियां मिलेंगी? अरे वो तो लकड़ी की मूर्ति थी, उसमें हड्डियां कहां से मिलेंगी? तो कहा तुम ही निश्चय कर लो कि मैंने क्या जलाया है, लकड़ी जलाई है कि भगवान जलाए हैं। बात मात्र इतनी है कि हमारी बुद्धि, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसा करें, उपदेश और दृष्टांत से हमको वो चीज लेनी चाहिए जो हमारी समझ में आए और जो वास्तव में कथाकार कहना चाहता है, उपदेशक कहना चाहता है, बताना चाहता है। वो सिद्धांत मात्र इतना है कि जिनकी हम पूजा करते हैं उनमें भगवत्ता हमारे अंदर में पैदा हुई कि नहीं, ये भगवान है ये हमने स्वीकार किया कि नहीं, ये भगवान है ये हमने माना कि नहीं। इसलिए ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान को ठंडी लग रही, उन्हीं विग्रह को, उसी विग्रह को। और वृंदावन में एक महात्मा थे, वो तो बड़ा ख्याल रखते थे कि भगवान को ठंड लग रही है इसलिए उनके लिए रजाई बनाओ, भगवान को ठंड गर्मी लग रही है तो उनको पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, भगवान को प्यास लगती है इसलिए ये जो पुष्टिमार्गी लोग हैं वो तो जल भी रखते हैं साथ, झाड़ी रखते हैं, झाड़ी भर करके रखते हैं हमेशा। ये कितनी सुंदर भावना, कितनी प्यारी भावना। तो एक महात्मा ने कहा, किसी व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि तुम्हारे भगवान को ठंडी लगती है, क्या बकवास करते हो, मूर्ति में भी कहीं ठंड और गर्मी का एहसास हो, ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। तो कहा अच्छा तुम्हारे भगवान श्वास लेते हैं? बोलो बिल्कुल लेते हैं, मैंने महसूस किया है। तो कहा अच्छा आप दिखाई? तो वो रुई लेकर के गए और सामने नाक के सामने रख दिए तो उड़ने लगी ऐसे। बिल्कुल हो सकता है, यथार्थ है, इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन बस भावना हमारी मन की कैसी है, हमारी वृत्ति कैसी है। तो मय्य अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। दृढ़ भक्ति का मात्र तात्पर्य इतना है कि कितने भी दुख और संकट आए आपके जीवन में, आपके निश्चय में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपका समर्पण एक रस होना चाहिए। गोपियों के जीवन में भी परेशानियां आई, गोपियों ने अपना व्यवहार भी संभाला। हमारे लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो गोपियां, सबसे बेहतरीन। उन्होंने संसार को और परमार्थ को दोनों के साथ में जो सामंजस्य बिठाया है अद्भुत है। आपको एक क्षण के लिए भी एहसास नहीं होगा कि गोपियां साधना कर रही हैं, और आपको एक क्षण के लिए भी एहसास नहीं होगा कि गोपियां भगवान के चिंतन से कहीं अलग है। चिंतन से अलग नहीं, बल्कि हम और तुमसे और सबसे ज्यादा चिंतन वही करती हैं। इसीलिए उनकी चिंतन को देखकर के उद्धव जी कहते हैं आशा महो चरण रेरण जुसाव हम श्याम। वो ज्ञानी आदमी कहता है जो कभी अपना जन्म नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं एक बार चाहता हूं कि अगला जन्म मेरा हो। उन गोपियों की साधना देख करके, उन गोपियों की तपस्या देख करके सिर्फ इतना प्रभावित हो गया, सिर्फ तपस्या उनके जीवन को देख करके। और कहते हैं कि ये पहली उदाहरण हमने देखी है कि घर में रहते हुए उसको पा लिया जिसको वेद ढूंढते रह गए, पा नहीं सके घर में रह करके, और सारे काम करते हुए, बच्चों को पालन पोषण करते हुए, घर की रोटियां बनाते हुए, और सारा काम कर ले गई वो। क्यों? क्योंकि वो काम करते हुए भी उनका जीवन परमात्ममय था। मैंने एक कहानी सुनी, कथा सुनी, और मुझे इतना बढ़िया लगा कि हमारे और आप में कितना फर्क है और उनमें कितना फर्क है, हमारे जीवन में और उनके जीवन में कितना अंतर है। कि हम भगवान के मंदिर में बैठते हैं तो भी संसार की कामना करते हैं कि हे प्रभु हमारा वो काम हो जाए, कि हे प्रभु हमारा वो काम हो जाए। और एक गोपियां, मैंने सुना है कि एक गोपी ध्यान कर रही थी यमुना के किनारे बैठ करके, तो देवर्षि नारद जी चकित रह गए कि गोकुल में, ब्रज में और ध्यान, यहां ध्यान की जरूरत कहां, यहां ध्यान की आवश्यकता कहां, जहां परमात्मा स्वयं ब्रह्म और दहली पर उल्टा लेट करके कह रहा हो कि आओ आओ और मुझे उठा लो आकर के, इतना सुलभ हो, सहज हो, वहां ध्यान करने की आवश्यकता कहां। तो फिर भी उत्सुकता जागी, पहुंचे, पास में गए, देखा गोपी तो और चकित रह गए, गोपियों को ध्यान की जरूरत कहां, उनके साथ तो भगवान हाथ पकड़ करके खेलते रासलीला करते, उनको कहां जरूरत है ध्यान की। फिर भी वीणा बजाया, तार झंकृत किए, आंख खोली गोपी ने, देखा भगवान, नारद जी प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि वो तो बाद में सब बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारी उत्सुकता को शांत करो, हमें बताओ जरा कि तुम ध्यान करने के लिए क्यों बैठी। तो गोपी कहती कि मैं बड़ी परेशान हूं, सुबह सुबह उठी, सोचा कि थोड़ा लीप लूं, लीपना जानते गोबर से लीप लूं, घर में काम कर लूं, तो मैं लीपने लगी तो लगा कि कृष्ण आ गए और उन्होंने हमारा लीपा हुआ खराब कर दिया, तो वो भी पूरा नहीं हो पाया। फिर धान कूटने लगी, सोचा कि यही काम पूरा कर लूं, तो मालूम पड़ा कि वो आ गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो वो भी नहीं हो पाया, चूड़ी और टूट गई हमारी। उसके बाद में फिर मैं गाय धोने के लिए गई तो लगा कि कृष्ण आ गए और कहने लगे ये धार सीधे मेरे मुंह में डालो, तो मैं डालने लगी तो मालूम पड़ा दूध सब नीचे गिर गया, क्योंकि कृष्ण कहीं नहीं है, मन में ही बसे हुए। जहां भी काम करती हूं वहां कृष्ण नजर आने लगते हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो पानी ही भर लाते हैं यमुना से। पानी भरने के लिए आई थी मटकी लेकर के जा ही रही थी कि मालूम पड़ा वो आ गए। उन्होंने कहा कि ये मटकी मुझे दे दो। मैं देने लगी, वो गिर गई, फूट गई, चार मटकियां फोड़ चुकी हूँ। रोज रोज घर में सुनना पड़ता है। तो मैं ध्यान कर रही हूँ कि थोड़ी देर ध्यान करके और कृष्ण से कहूं कि बाबा थोड़ी देर चले जाओ ताकि घर का काम निपटा लो, थोड़ा घर का काम कर लो, तुम रहते हो तो घर का काम नहीं होता। कितनी विचित्र बात है कि हम ध्यान करते हैं इसलिए कि संसार हट जाए और भगवान आ जाए, और गोपियां ध्यान करती हैं इसलिए कि थोड़ा सा भगवान चले जाए बाहर तो वो दुनियादारी का भी काम कर ले। लेकिन इतनी इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी गोपियों के जीवन में कभी भी असामंजस्य नहीं हुआ, कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आई कि उनका घर बिगड़ रहा है। आनंदित है, प्रसन्न है, और प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए भगवान का चिंतन कर रही है। तो हमें भी इस तरह से चिंतन करना चाहिए कि घर का काम भी करते रहें, घर के काम को बोझ मत बनाओ। कई लोग कहते भी महाराज क्या करें, फुर्सत नहीं, रात दिन यही बोलते हैं, फुर्सत नहीं है, बड़े परेशान हैं, घर के इतने काम हैं, इतने झंझट हैं। आप साधक हो, आप भक्त हो, तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि जो आपकी क्रिया है उस क्रिया को परमात्मा की क्रिया बना लो। आप ये समझो ना कि परमात्मा ने आपको अपना नौकर बना करके इस दुनिया में भेजा है कि ये काम तुमको करना है, और सारा काम परमात्मा के लिए कर रहे हो। संपूर्ण जीवन ही भगवान के लिए जब आपने समर्पित कर दिया तो रोटी खाना व आपका काम कहां रहा, कि कपड़ा धोना व आपका काम कहां रहा, वो सब कुछ सारी क्रिया जो कुछ तुम सोचते हो, भगवान गीता पढ़ते हो, कितनी प्यारी बात भगवान ने कहा, यत करोस यदश्नास यद जुहोस ददास यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करते हो वहां कोई नियम, वहां उन्होंने सीमा नहीं बांधी कि नहीं तुम पूजा करते हो तो हमको देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पाठ करते हो तो वो हमको समर्पित करना, कि यज्ञ करते हो तो वो हमको समर्पित करना, अच्छे काम करते हो, बढ़िया बढ़िया नामी गिरामी काम करते हो जिसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, कि इज्जत हो, कि नाम हो, कि यश हो, वो काम तुम हमको देना। भगवान ने कोई नियम और कोई सीमा नहीं बनाई। भगवान कहते हैं यत करोश, जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। भागवत में आया काय न वाचा मनस इंद्रिय बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभाव, और करोम यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति। कितनी प्यारी बात है। अब बताओ आप हमको कि भगवान का भजन करने के लिए तुम्हें समय निकालने की कहां जरूरत है। इस पूरे श्लोक में हमको इतना दिखा दो कि इसमें ये लिखा हो कि तुम थोड़ा सा टाइम निकाल करके और भगवान का भजन करो, बताओ कहां है ये श्लोक। तो ये कह रहा है अच्छा तुम बच जाते हो, माफ करना है? तुम कहते हो कि एक घंटे हमने पूजा कर ली और छुट्टी हो गई तेज घंटे की। आप कम चाहते हो और भगवान चाहते हैं कि तुम हर समय पूजा करो। कितनी प्यारी बात है। भगवान चाहते हैं कि 24 घंटा नहीं, जब तक सोते हुए भी तुम्हारी पूजा हो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि ये निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। आखिरी लाइन जरा पढ़ो, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव। जो कुछ भी शरीर से हो रहा है वो तो आपकी आराधना ही तो है, आपकी पूजा ही तो है, तो समस्या फिर कहाँ है, उलझन कहाँ है? उलझन हमने अपने दिमाग में बना रखी है। उन उलझनों को दूर करो और आप संसार के कामों को, अपने कर्तव्यों को कभी भी बोझ मत समझो। परिवार को पालना बोझ नहीं है भाई, वो आपका कर्तव्य है। सोचो जरा कि अगर हमारा पालन पोषण हमारे बाबा माँ बाप ने भी बोझ समझ करके किया होता तो हमें कैसा लगता। चिंता मत करो, चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, आप कर्तव्य करो, खाली कर्म करो और प्रसन्नता पूर्वक आराधना पूर्वक। मुझे लगता है सबसे बढ़िया भक्ति यही है। वही अनन्य भाव है ना, भक्ति कुरवंती ये दृढ़। आगे चर्चा कल करेंगे और एक भजन छोटा सा गाता हूं।
सीताराम 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 कहिए सीताराम, जाहि विधि रख राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रख राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में हो, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला विधि का विधान जान हान लाभ सही है विधि का हान लाभ सही है जही विधि रख राम ताई विधि रही किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा ओ किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा भाएगा फल आशा प्यार शुभ काम करते रहिए फल आशा जाही विधि रख राम ताही विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे महलों में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दे ओ आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक संत राम संत संग राम रंग अंग अंग रंगिए संत संग राम रंग अंग अंग रंगिए जय विधि रख राम ताई विधि रहिए
एक बार और बोलिए
आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दे ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तोड़ दे काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए काम रस पगिए जही विधि रख राम काई विधि रहिए जही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि रख राम काई विधि रहिए रहिए काई विधि रहिए जही विधि रख राम काई विधि रहिए जही विधि रख राम काई विधि रहिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।